रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है,
एकता लानी है।
धुन रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
ओम शांति। अभी हम भ्राता जी से सुनेंगे माला का मणका बनने की विधि। अभी हम सुनेंगे और खजानों से भरपूर होंगे भ्राता जी रामलोचन जी। ओम शांति।
ओम शांति। हम आप सभी ऊंचते ऊंच परम आत्मा के बच्चे, ऊंचे लक्ष्यधारी हैं। हम आप सब आत्माओं का ऊंचे ते ऊंचा लक्ष्य ही है माला का मड़का बनना। ये बहुत ऊंची एम ऑब्जेक्ट है। मड़का तो सभी हैं, लेकिन माला का मड़का बन जाए यह कोटि में को बनते हैं। क्योंकि जो माला का मड़का है उस मड़के की विशेषता कितनी है, उस माला के मड़के को भगत लोग सिमरते हैं और जिस सिमरण से समझते हैं कि मेरे पाप कट जाएंगे, भगवान हमारे ऊपर खुश हो जाएगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हमें मुक्त या जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो जिस मड़के के सिमरने से इतनी ऊंची प्राप्ति है, तो वह मड़का स्वयं में कितना महान और कितनी विशेषताओं से संपन्न होगा। तो हम आप सबका लक्ष्य है माला का मड़का बनना। बताया मड़का सभी हैं, जैसे बाबा मुरली में कहता है कि अर्जुन सभी हैं, क्योंकि अर्जुन उसे कहा जाता है जो भगवान का ज्ञान अर्जन करे, सुने, उसको अर्जुन कहा जाता है। तो अर्जुन सभी हैं, लेकिन नंबर वन अर्जुन वो है जो भगवान के ज्ञान को जिस प्रकार से जिस रूप में बोला उसी प्रकार से उसी रूप में धारण कर ले, वो है नंबर वन अर्जुन। ऐसे ही मड़के तो सब हैं, जिन आत्माओं ने भगवान को पहचाना वो तो मड़का बन ही गई। लेकिन किस नंबर का मड़का, अष्ट रत्नों में 108 में या 16108 में या 9 लाख में, किस में हैं? मड़के तो सब हैं, लेकिन नंबर वन मड़का बनना है। नंबर वन क्यों कहा गया? आप देखो माला के अंदर, क्योंकि यहां दो शब्द है, माला और मड़का। सिर्फ मड़का नहीं है, माला और मड़का। तो हमें मड़का बनना है लेकिन माला का। तो माला की विशेषता क्या है? एक दाने को माला नहीं कहा जाएगा। जैसे एक फूल है, एक फूल को हार या माला नहीं कहा जाता है। जब कई फूल एक के साथ एक जुड़ जाते हैं तब उसको माला कहा जाता है। ऐसे ही जो मड़के हैं, जब एक के साथ एक जुड़ करके इकट्ठे हो जाते हैं तब उसको माला का रूप दिया जाता है। और माला में देखो विशेषता है कि एक मड़के से दूसरा मड़का लगा हुआ है, दूर दूर नहीं है, लगा हुआ है। तो इसका अर्थ है कि माला में वही मड़का आ सकता है जो नंबर वन मड़के से मिला हुआ होगा, अर्थात नंबर वन मड़के के समान होगा। अंतर तो 1% का जरूर है, तभी पहला और दूसरा नंबर बना। जैसे नंबर वन मड़का है अपना ब्रह्मा बाबा, नंबर वन। उनकी विशेषता देखो, बाबा कहता था कि आप बच्चों से कभी गलती नहीं होनी चाहिए, या ब्रह्मा के लिए शिव बाबा कहता था कि इससे कभी कोई गलती नहीं होगी, अगर हो भी गई तो हम संभाल लेंगे। तो देखो नंबर वन मड़का है जिससे कभी कोई गलती होगी ही नहीं। और नंबर दो मम्मा का क्या था? कि एक बार गलती हो जाए तो दोबारा न होने पाए। अंतर थोड़ा आ गया, एक बार गलती हो जाए तो दोबारा ना हो, बिल्कुल मिला हुआ मड़का है। ऐसे दो से तीन, तीन से चार, सब में मिला हुआ होगा। सर्व गुण विशेषताएं समानता में होंगी तभी तो एक के साथ मिलेंगे, लेकिन कहीं कुछ कमी होगी जो उससे थोड़ा नीचे होंगे। तो माला का मड़का बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि संगठन में रहते हुए एक दूसरे से संस्कार मिलाकर चलना। अब प्रश्न उठता है कि हर एक का संस्कार अलग है, कैसे मिल जाएगा? जब नंबर ही अलग है तो संस्कार तो अलग होगा ही होगा, पुरुषार्थ तो अलग होगा ही होगा, लेकिन माला बनने का सुंदर विधि है संस्कार अलग हैं, पुरुषार्थ अलग है, लेकिन एक माला में आने की विधि, एक के श्रीमत प्रमाण, स्वयं के पुरुषार्थ को चलाना। जब हम आप सभी एक के श्रीमत के प्रमाण अपने पुरुषार्थ को चलाएंगे तो माला बन गई या नहीं बन गई, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य हो गया, एक जैसे विचार हो गए कि मुझे ये करना है, तो माला में आने की विधि एक के श्रीमत पर स्वयं को चलाना, वो तो माला में आ जाएंगे। लेकिन माला में नंबर वन मड़का बने या नंबर वन मड़के के साथ जाएं, उसकी विधि है नंबर वन मड़के के समान बनना। नंबर वन मड़के के समान स्वयं को बनाना। अब आप देखो नंबर वन मड़का, उसकी विशेषता क्या है, किस विशेषता से नंबर वन मड़का बना। जिस नंबर वन मड़के का यादगार भक्ति मार्ग में मूर्ति के रूप से है, मूर्तियां सब हैं, लेकिन किसी मूर्ति की पूजा हर कर्म की और विधिवत होती है, किसी की कभी कैसे, किसी की कभी कैसे, लेकिन नंबर वन जो मूर्ति है उस मूर्ति की विशेषता देखो। जैसे भक्ति में सिमरण के लिए माला बनाया, राम राम करते या जो भी कहते हो सिमरण करते, ऐसे कीर्तन के लिए मूर्ति बनाया, उनकी आराधना करने के लिए मूर्तियां बनाई, पूजा करने के लिए मूर्ति बनाई। अब आप देखो कि उन मूर्तियों की क्या विशेषता है, जिस विशेषता को इस समय संगम युग पर हम आत्माओं को धारण करना है। जो विशेषता है उसको इस समय संगम युग पर हम आत्माओं को धारण करना है। एक आप चैतन्य रूप में मूर्ति बने थे, पहले चैतन्य में देवता थे, द्वापर युग में आपकी यादगार मूर्ति बनी। अब उस मूर्ति को सामने लाकर देखो, जो नंबर वन मूर्ति है उसकी क्या विशेषता है। उस विशेषताओं को वर्तमान समय धारण करना है। एक नंबर वन मूर्ति की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से आठ विशेषताएं हैं। अगर उन आठों को धारण कर लें तो अष्ट में अवश्य आ जाएंगे। पहली बात, आप मूर्ति को सामने लाकर देखो, वो आठों विशेषताएं क्या आती है। पहली बात, मूर्ति एक स्थान पर स्थित रहती है। जब मूर्ति को स्थापित कर देते हैं तो एक स्थान पर स्थित रहती है, हिलती डुलती नहीं है। पहली विशेषता। दूसरी है कि मूर्ति निर्भय और निर्वेर होती है। निर्भय और निर्वेर, किसी से बैर नहीं। तीसरी बात, मूर्ति अलंकारधारी और श्रृंगारी हुई होती है। चौथी बात, दिव्य गुणधारी और दिव्य स्वरूपधारी होती है। पांचवी बात, मूर्ति सदा दाता होती है, देने वाली होती है। छठी बात, मूर्ति इच्छा मात्रम अविद्या होती है। सातवीं बात, मूर्ति सदा हर्षित रहती है। और आठवीं बात क्या होगी, आप लोग बताएंगे। एक पॉइंट जी, वरदानी मूरत तो बताया दाता है, जी ताजधारी होती, पता है श्रृंगारी और अलंकारी आया उसमें। अच्छा, मूर्ति की आठवीं सबसे बड़ी विशेषता है, फीलिंग प्रूफ होती है, कभी फीलिंग नहीं आती है उसे। अच्छा, इन बातों को आप देखो। पहली बात है, मूर्ति एक स्थान पर स्थित रहती है, वो तो स्थूल बात है। आप हम आत्माओं को मूर्ति बनना है तो वो एक स्थान पर है, और आत्मा का स्थिति रूपी स्थान है। आप आत्मा का स्थान स्थिति रूपी स्थान है। आप चाहे परम धाम में बैठें, चाहे सूक्ष्म वतन में बैठें, या आप कर्म योगी की स्थिति में रहें, लेकिन जिस स्थिति में रहें उसी स्थिति रूपी स्थान पर बैठे रहें, आए जाए नहीं, हलचल नहीं, एक स्थान पर स्थित। जिस स्थिति में आप स्वयं को स्थित करना चाहो या संकल्प करो, उस समय उसी स्थिति में स्थित रहो। मूर्ति कहीं नहीं जाती है, स्थित रहती है, और मूर्ति के पास लोग आते हैं। आप इस स्थिति में स्थित होकर आप पूरे संसार की सेवा कर सकते। लेकिन इस स्थिति का आधार क्या है?
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
ओम शांति। एक स्थिति रूपी स्थान पर आत्मा जब चाहे स्थित हो जाए, उसकी विधि है, अगर आप आत्मा को इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास है, आप इस शरीर से डिटैच हो सकते हो, तब तो आप जिस स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होना चाहो उतनी देर स्थित रह सकते। अगर शरीर से डिटैच होने का अभ्यास नहीं है तो मुश्किल लगता है। इसलिए एक स्थान पर स्थित रहने के लिए माला का नंबर 1 मड़का बनने के लिए इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास बढ़ाओ। जितना ज्यादा न्यारे होने का अभ्यास होगा उतना माला में नजदीक आएंगे, मड़के के बिल्कुल नजदीक, नंबर 1 मड़के के नजदीक। दूसरी बात, मूर्ति निर्भय और निर्वेर होती है। मैं समझता हूं मनुष्यों को 3 प्रकार का भय होता है। एक, पाप कर्म करते हैं तो उससे डरते हैं, कहीं कुछ हो न जाए। दूसरी बात, मरने से डरते हैं, कहीं यकायक कुछ हो न जाए। और तीसरी बात, कहीं हमारे जीवन में कुछ इतना बड़ा उतार चढ़ाव ना आ जाए, उससे डरते। 3 बातों से लोग मेरे समझ से डरते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद इन 3 डर से टोटल मुक्त हो जाना चाहिए। क्यों? पहली बात है, लोग पाप कर्म से डरते हैं, क्योंकि पाप कर्म कर लिया है, मान लो चोरी की है, कुछ भी किया हुआ है तो डर लगा रहता है, कहीं पकड़े न जाए, मतलब कुछ भी। और बाबा के बच्चे बने तब से यही बाबा रोज शिक्षा देता है, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा श्रेष्ठ कर्म करो, मनसा से भी श्रेष्ठ करो। अभी पिछली मुरली में और आज भी आपने बाबा के संदेश में सुना कि जैसे आप बच्चे आत्मा पर परमात्मा पर ड्रामा पर विशेष ध्यान दे रहे हो, ऐसे कर्मों की गूह गति पर भी ध्यान दो। अभी भी बाबा इशारा खिंचवाया। तो अगर हमारा श्रेष्ठ कर्म है तो डरेंगे नहीं, लेकिन भगवान के शब्द हैं सच बिठो तो नच, अर्थात सच बोलने वाला सदा खुशी में नाचता रहता है। तो डर से मुक्त होने का बहुत सुंदर विधि श्रेष्ठ कर्म। दूसरी बात, लोग मौत से डरते हैं। बहुत सुंदर बात है, जब पंजाब में पहले हंगामा चल रहा था तो जब पंजाब की पार्टी बाबा से मिल रही थी तो बाबा ने कहा, क्या मरने से डरते तो नहीं हो, क्योंकि बहुत हंगामा चल रहा था। तो बाबा ने कहा, तुम तो पहले से ही जीते जी मर गए हो, अब क्या मरोगे। तो अगर हम जीते जी मर के भगवान के बन जाएं तो मरने का डर खत्म हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा बहुत सुंदर शब्द चार दिन पहले मुरली में था वरदान में, कि अगर आप योग युक्त हैं तो सागर की ऊंची लहर आ रही है, लेकिन अगर योगी हैं तो सेफ हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये। और वैसे भी भगवान कहता है, अकाल तख्त नसीन बनकर महाकाल को साथ रखो तो ये काल कुछ कर ही नहीं सकता है। महाकाल मीन्स परमात्मा को, अकाल तख्त नसीन बनकर महाकाल को साथ रखो तो ये काल कुछ नहीं कर सकता है। और वैसे भी देखो, मौत किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? शरीर की। तो आप शरीर हो या आत्मा हो तो फिर मरने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो जितना यह स्थिति बनती जाएगी आत्मक स्वरूप की स्थिति, तो मौत का डर निकलता जाएगा और महाकाल की याद और अकाल तख्त नसीन बनकर रहोगे तो इस दुनिया की चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकेगी। तो निडर बनो। और तीसरी बात है कि कहीं कुछ काम धंधा में ऊपर नीचे ना हो जाए। आपको तो तीनों कालों का ज्ञान मिल चुका है, कर्मों की गूह गति का ज्ञान मिल चुका है, इसलिए कोई कल्प चलने की तो मार्जिन ही नहीं। अगर बिजनेस में घाटा भी हुआ तो बाबा ने इस घाटे को खुशी खुशी पार करने की दो विधि बताई। एक तो ये कि अगर बिजनेस में घाटा हुआ तो प्रभु की प्राप्ति के आगे वो बिजनेस का घाटा क्या चीज है। आपको भगवान मिला हुआ है, सोचो आपका बहुत बिजनेस चल रहा होता, करोड़ों रोज कमा रहे होते, लेकिन भगवान आपको नहीं मिला होता। और एक है अब आपको भगवान मिला है लेकिन कमाई नहीं हो रही है, कम हो रही है या थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, दोनों में कौन सा अच्छा है? भगवान के मिलने वाला या बिना भगवान के पैसा वाला? दिल की तो आवाज यही है ना कि भगवान के मिलने वाला, क्योंकि भगवान मिला है तो भगवान के साथ भाग्य तो मिल ही गया है, भाग्य तो कहीं जाने वाला है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास्ट कर्म का कुछ खाता था जो अब आया है, खत्म हो जाएगा। बाप की गारंटी है, दुनिया भूखा मरे मरे लेकिन बाप अपने बच्चों को अंत तक दाल रोटी खिलाता रहेगा, इससे बड़ी गारंटी और क्या? बड़े बड़े करोड़पति को रोडपति होने में देर नहीं लगती है, एक ही दिन में जीवन पलट जाता है, लेकिन आपकी तो भगवान ने गारंटी ले रखी है। हम तो कभी हंसते हैं कि दुनिया भूखा मरेगी लेकिन भगवान खिला खिला के मारेगा, मरना तो भाई है, क्योंकि असल में देखो जब से आप सब बाबा के बच्चे बने हैं दुनिया खा रही है, आप भले दाल रोटी खा रहे होंगे लेकिन दोनों के चेहरे में देखो किसका चेहरा चमक रहा है, कितना अंतर है। बाबा अपने बच्चों की संभाल करेगा। ते 3-4 साल पहले जब गुजरात में भूकंप आया था, एक कच्छ भुज की तरफ अरबपति लोग रहते थे, भूकंप में सब दब गया, बैंक का सब कुछ खत्म हो गया, बेचारे खाने के लिए तरसने लगे, गवर्नमेंट से कोई चीज उनको लेने में शर्म महसूस होती थी। तब अपने सेंटर की बहनों ने उनको अपने घर में बुला करके सेंटर पर सम्मान दे करके उनको खिलाया पाला, आज वो ज्ञान में चल रहे कुछ संपर्क में। तो देखो पैसा रोड पति बनाने में देर नहीं लगेगा, लेकिन आप बच्चे सदा ही बेफिकर बादशाह। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये तो पास्ट कर्मों का फल है, खत्म होगा। बाकी भाग्य विधाता के बच्चे हैं, भाग्य हमारा कहीं जाने वाला है ही नहीं। तो निर्भय और निर्वेर ब्राह्मण बने तो बैर शब्द क्या होता है हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो, वो भगवान जो पूरे संसार का पिता है, और आपने उस पिता को पहचाना है, उस पिता के आप बच्चे बन चुके हो, तो अब आपको ये महसूसता आती होगी कि पूरा संसार ही हमारे बाप का बच्चा है, मेरे ही भाई बहन है। वो दुखी हैं, उनको बाबा का ज्ञान देकर, बाबा से कनेक्शन जुटवा कर उनको भी सुखी बनाए। उनको क्रोधित देख करके आपको रहम आता है, ये बिचारे हैं। क्यों? भगवान से दूर हैं, माया के या रावण के अधीन हैं, इनको छुड़ाएं, इनसे मुक्त कराएं, तो निर्वेर स्वतः हो जाएंगे। तो जो निर्वेर होता है वो निःसंकल्प भी बन सकता है, उसकी निःसंकल्प स्थिति बन सकती है। अगर जरा सा भी किसी के साथ संकल्प में भी बैर है, टकराव है, ईर्ष्या है संकल्प में भी, तो निःसंकल्प स्थिति नहीं बनेगी। आप ऊंची स्थिति में नहीं स्थित हो पाएंगे। इसलिए स्वयं को परमात्मा के बच्चे इस स्थिति में स्थित करके, सभी भगवान के बच्चे हैं, यह अंदर जितनी भावना जागृत होगी उतना निर्वेर बनते जाएंगे। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो ऐसे नहीं दे रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर पति लौकिक में अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारता है तो ऐसे ही नहीं मारता है, जरूर इसने कभी मारा है तो मार रहा है। तो आप सोचो कि एक थप्पड़ का हिसाब पति पत्नी के रिलेशन में भी थप्पड़ का हिसाब किताब है, ऐसे नहीं मारा है। तो अगर कुछ कोई कहता है हमें तो ऐसे ही नहीं कह रहा है, हमने उसके साथ यह पार्ट बजाया है, हमने भी कभी उसको गाली दी हुई है तो आज दे रहा है। और अच्छा है जो अभी दे रहा है और चुप्तू हो रहा है, नहीं तो आत्मा को अभी वापस घर चलना है, टोटल खाली होकर चलना है, सारे हिसाब किताब खत्म करके चलना है। अगर इसने गाली नहीं दी और मैंने पहले दे रखा है, वो हिसाब किताब रह गया तो धर्मराज के आगे चुप्तू करना पड़ेगा, तो उससे तो हमारा पद भी कम हो जाएगा। तो अच्छा हुआ जो उसने गाली दे दिया, हमारा खाता क्लियर हो गया। यह अगर अंदर संक संकल्प रहे और प्रैक्टिकल की बात है तो किसी से किसी प्रकार का मन का मुटाव नहीं होगा, किसी के अंदर दूसरी भावना नहीं जागृत होगी। तो निर्भय और निर्भेद तीसरी विशेषता है कि मूर्ति दिव्य गुणधारी और दिव्य स्वरूपधारी होती है। दो बातें हैं, दिव्य गुणधारी और दिव्य स्वरूपधारी। दिव्य गुण धारण करने की विधि दो बातें, एक तो गुणों के महत्व को जानना, दूसरा विल पावर धारण करना। विल पावर और गुणों के महत्व को जानना कि एक गुण धारण करने से भी कितने महान बन जाते। आप लौकिक दुनिया में देखा होगा कि अगर कोई सन्यासी सिर्फ चुप रहना शुरू कर दे, नहीं बोले, तो उसका नाम मौनी बाबा पड़ जाता है। एक उस गुण से इतना फेमस हो जाता है, इतना ऊंचा मान लेते हैं। एक कोई अनाज नहीं खाता, सिर्फ फल खाता है, तो उसके नाम से फलाहारी बाबा मशहूर हो जाता है। कोई सत्तू खाता तो सत्तू वाला बाबा मशहूर हो जाता। मीन्स कहने का, एक गुण धारण करने से इतनी उसकी महिमा हो जाती है, लौकिक की बात। और यहां परमात्मा हम सब आत्माओं को कितना दिव्य गुण देता है, वो तो गुण है और अपना सबका दिव्य गुण है। उनका सिर्फ गुण है और अपना दिव्य गुण है। तो दिव्य गुण के महत्व को समझो। जब एक गुण धारण करने से उनका नाम इतना बड़ा हो जाता है और आप दिव्य गुण धारण करेंगे तो आपका नाम कितना बड़ा, देवी देवता बन जाएंगे। कितना बड़ा नाम हो जाएगा, देवता बन जाएंगे। इस चीज को समझो कि इस गुण धारण करने में कितनी बड़ी प्राप्ति है। लेकिन गुण को धारण करने के लिए विल पावर चाहिए, क्योंकि 63 जन्म आत्मा अवगुण को देखते, वर्णन करते, उन्हीं के साथ साथ रहते रहते अवगुणधारी बन चुकी है। अब गुण धारण करने के लिए आत्मा को नॉलेज मिल चुकी है, समझ मिल चुकी है, लेकिन समझ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विल पावर की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है। विल पावर प्राप्त करने की सहज विधि है अपने मन अर्थात संकल्प वाणी और कर्म तीनों को प्रभु के हवाले बिल कर दो। तीनों को भगवान के हवाले बिल कर दो। संकल्प बोल कर्म बिल करना अर्थात आप जो संकल्प करो तुरंत चेक करो कि यह संकल्प संकल्प भगवान को पसंद हैं। अगर पसंद हैं तो वो संकल्प चलाओ, नहीं पसंद हैं तो छोड़ दो। जो बोल बोलो, चेक करो ये बोल प्रभु को पसंद हैं। ऐसे जो कर्म करो, चेक करो भगवान को पसंद हैं। अगर भगवान के पसंद वाला आप करोगे तो आपको विल पावर कैसे मिलेगी? भगवान आपके ऊपर राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा और भगवान आपको वरदान दे देगा। और वरदान स्वयं में इतनी बड़ी शक्ति है जो सब कुछ खुद ही कर लेगा। लेकिन वरदान जब प्रभु से मिल जाए तब आप कहते होंगे बाबा रोज तो मुरली में वरदान देता है। लेकिन वो तो देता है लेकिन आपको मिलता नहीं। वरदान उसको मिलता है जो उसके लायक होता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। जैसे आप लौकिक में देखो किसी दूसरे को आप पिताजी पिताजी कहो तो क्या पिताजी कहने से और वो आपको बेटा बेटा कहे तो क्या अपनी प्रॉपर्टी दे देगा वो आपको? बेटा कहने से दे देगा? नहीं, अपने बच्चे को देगा जो उसके गोद का बच्चा होगा, लायक। वहां लायक अर्थात उसके गोद का बच्चा चाहिए। ऐसे भगवान का वरदान उसको मिलता है जो वरदान के लायक होता है, देता सबको है। तो लायक बनने की विधि है भक्ति मार्ग में भी। वरदान लेने के लिए लोग तपस्या करते हैं, अर्थात अपनी बुद्धि को वरदान लेने के लायक बनाते हैं तब मिलता है वरदान, ऐसे नहीं मिल जाता है। तो यहां पर भी संकल्प बोल कर्म भगवान के श्रीमत के प्रमाण चलाना ही लायक बनना है। अगर यह श्रीमत प्रमाण नहीं है तो आपको प्रभु से वरदान मिलेगा नहीं, अर्थात आपके अंदर विल पावर इतनी नहीं आएगी कि आप जो चाहे सो कर सके। तो दिव्य गुणधारी और दिव्य रूपधारी देवताओं की दो बातें हैं। देखो वैसे किसी से मिलना होगा तो कहेंगे हम फलानी चीज देख करके आए हैं, और देवताओं के लिए कहेंगे हम उनका दर्शन करके आए। देखो रूप की भी कितनी महिमा है, उनका दर्शन करके आए हैं। या भी होगा तो आप कहेंगे किसी मिनिस्टर से मिलके आए, फलाने से मिलके आए। लेकिन जहां देवताओं की बात आएगी कहेंगे हम उनका दर्शन करके आए, मिलके आए हैं नहीं कहेंगे, दर्शन करके आए। कितनी महानता है। दिव्यता का आधार है देवताएं दिव्य रूपधारी हैं, इसका प्रूफ देखो। चाहे राम की मूर्ति हो चाहे सीता की मूर्ति हो, नारायण की हो लक्ष्मी की हो, दोनों की मूर्ति को मूर्ति ही कहते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी की मूर्ति को मूर्ति कहेंगे और नारायण की मूर्ति को मूर्ता कहेंगे, नहीं, दोनों को ही मूर्ति कहा जाता है, अर्थात दिव्य रूपधारी है, देह भान से मुक्त है, उसका आधार है इस संगम युग पर आत्म स्वरूप की स्थिति। दिव्य रूप अर्थात आत्मक स्वरूप की स्थिति, अव्यक्त रूपधारी, लाइट रूपधारी। तो जितना इस समय बनेंगे तो दिव्य रूप और दिव्य गुणधारी बन जाएंगे। इसके बाद टाइम हो गया, एक और लेते हैं। मूर्तियां सदा हर्षित रहती, सदा हर्षित रहती, हर्षित मतलब मुस्कुराती रहती है। कई बार बाबा कहता है जोर से हंसना भी विकार है, मुस्कुराना चाहिए। तो देवताओं की मूर्ति को सदा मुस्कुराते हुए दिखाया है चेहरे पर। अब संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं सदा मुस्कुराती रहें, इसका आधार है मुस्कुरा तो तभी सकेंगी जब संपन्न स्वरूप में स्थित होंगी। जब आत्मा को कोई चीज की कभी महसूस नहीं होगी, सर्व गुणों खजानों शक्तियों सबसे आत्मा संपन्न होगी, संतुष्ट होगी, तब मुस्कुरा सकती है। अभी संगम युग पर हो सकता है, ये जरूर होगा, अगर होता नहीं तो मूर्ति बनती कैसे मुस्कुराती हुई। इसकी बहुत सुंदर विधि है, इस समय आप बाप के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों के आधार से सर्व प्राप्तियां कर स्वयं को संपन्न बना लो तो संतुष्टता का अनुभव होगा, फिर आप सदा हर्षित रह सकते। बाप के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कर संपन्न बन। दूसरी बात, अगर जीवन में कोई चीज की कमी है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, तो उस चीज की प्राप्ति की विधि के द्वारा वह प्राप्त करके संपन्न बनो। एक उदाहरण दो मिनट का दे देते हैं। जैसे लौकिक में मान लो आपके पास धन की कमी है, कमी है, वो करोड़पति की बात नहीं, लेकिन कमी है, लेकिन आपको धन चाहिए, मान लो, क्योंकि कमी है तब तक चेहरा खिल नहीं सकता है, हंसेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं, कोई भी कमी। अब आपको धन चाहिए, तो इस ब्राह्मण जन्म में अगर धन की कमी है तो ये तो यही कहेंगे जरूर हमारे पाष्ट कर्म का फल है, ये तो पक्की बात। लेकिन पाष्ट कर्म का फल होते हुए भी इस जन्म में हम धन से संपन्न तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितना चाहिए उतना बाबा हमें दे दे, उसकी विधि है, उसकी विधि है। वैसे देखो लौकिक में भी कौन सा माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चे को दुखी देखेगा, कोई नहीं देख सकता। तो भला ये मीठा बाबा पारलौकिक बाप कैसे अपने बच्चे को किसी चीज के बिना दुखी देख सकता है? लेकिन कर्म का फल है वो तो सामने है, लेकिन उस दुख से छूटने की विधि है। जैसे देखो लौकिक में आपने एक एग्जाम्पल उदाहरण सुना होगा श्री कृष्ण और सुदामा का। सुदामा गरीब था, श्री कृष्ण संपन्न था, लेकिन सुदामा की दुख की स्थिति जानते हुए भी श्री कृष्ण सुदामा को कुछ दे नहीं सका। सुदामा को अपने कर्म का फल था, भोग रहा था, लेकिन श्री कृष्ण दोस्त है, दोस्त का फर्ज ही होता है दुख के समय मदद देना। लेकिन नहीं दिया, और दिया तो कब दिया? जब दो मुट्ठी चावल दिया तब। तो भगवान से लेने की विधि है, आप पहले दो मुट्ठी चावल दो तो भगवान से आप ले लो। बिना दो मुट्ठी दिए भगवान से मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे कर्म का फल है, लेकिन उससे छूटने की विधि है दो मुट्ठी चावल। और दो मुट्ठी चावल किसे कहा जाता है? दो मुट्ठी चावल का अर्थ है कि आपके पास जितना है, जितना है उसमें जितना बाबा के लिए कर सकते हो करो। जितना किसे कहा गया है? जैसे आपके लौकिक घर में मान लो इनकम 100 रुपया है, आपका एक पैसा भी नहीं बचता है, आपके 5 मेंबर हैं और पूरा खर्च हो जाता है, भाई आप कुछ बाबा के घर में ज्यादा दो नहीं दे सकते हो क्योंकि एक पैसा बचता नहीं। लेकिन प्रश्न है, अगर पांचवा के अलावा अगर छठा जन्म ले ले तो पालोगे या मार डालोगे? तो उसके लिए कहां से आ गया? उसी में एडजस्ट किया ना। तो जब उसके लिए हो सकता है तो बाबा के लिए क्यों नहीं हो सकता है? जब इतना आप करो तो देखो बाबा आपको दे देता है या नहीं दे देता है, फिर चेहरा खुश रहेगा। ठीक है, 3 विधि बताई, 4। तो माला के मड़के में आने के लिए इस विधि को अपनाओ। थोड़ा सा समय बचा है, ये संगम युग है ही है, असंभव से संभव होने का युग। कोई भी बाबा का बच्चा मड़के में आ सकता है, माला में आ सकता है। लक्ष्य रखो, अवश्य विजय मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।